नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान और यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह तैयार है और विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संचालित करना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के करीब 15,000 जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 200 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सम्मेलन की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुगलक रोड क्षेत्र में लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी देते हुए प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचे, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं।
आप लोगों को जानकारी हर्ष होगा कि कम से कम 16 जो है हेड ऑफ द स्टेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत व्यापक अरेंजमेंट किए हैं। इन अरेंजमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा अपने हरित क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों, चौराहों, गोल चक्करों और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 15,000 गमलेदार पौधे लगाए गए हैं। वहीं 17 प्रमुख गोल चक्करों पर भव्य सजावटी रोशनी और 11 प्रमुख होटल परिसरों में आकर्षक रोशनी लगाई गई है। 10 एनडीएमसी भवनों और स्थलों पर सजावटी प्रकाश व्यवस्था तथा 9 स्थानों पर आकर्षक पुष्प फव्वारे भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, अमृत उद्यान और दिल्ली मेट्रो संग्रहालय रविवार तक बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट।
ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचाने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें SDRF गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें अधिकतम 1100 जवान होंगे। यह बटालियन राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी और आपदा की स्थिति में घटना स्थल पर तेजी से पहुंचकर प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य कर सकेगी। इसके गठन के साथ ही दिल्ली सरकार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में उपलब्ध स्थानीय मानव संसाधन, आवश्यक कौशल और बेहतर समन्वय के साथ राहत तथा बचाव कार्यों में योगदान देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में SDRF का गठन लंबे समय से अपेक्षित था और ऐसे में प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा की स्थिति में गंभीर क्षति की आशंका को देखते हुए पहले से मजबूत तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र जरूरी है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान और पारगमन उन्मुख विकास नीति को लेकर बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य मेट्रो और रैपिड रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच सुविधाजनक होगी। बैठक में गैर मानक औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास, बाजारों और गोदामों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज मदनलाल खुराना चौक दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों की सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इनमें करोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज सेवानिवृत्त IAS अधिकारी SCL दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। श्री दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर श्री सूद ने श्री दास को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद व्यक्त की कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को मिलेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध मादक गोलियां की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम 832 ग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से 4-पहिया वाहन भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने आज दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान की स्थिति और उसके भुगतान तथा यातायात अपडेट आसानी से देख सकेंगे। लोगों की मदद के लिए इसमें ट्रैफिक सारथी नाम का AI चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जो तुरंत जानकारी और सहायता देगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये वेबसाइट सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि तकनीक और नागरिकों को साथ लेकर चलने से दिल्ली को और सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए पात्र परिवारों में क्षय रोग से बचाव के इलाज का दायरा 55% और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर 74% तक पहुंच गया है। साथ ही 980,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरे किए गए हैं और निक्षय मित्रों के जरिए 1,15,000 से अधिक फूड बास्केट बांटी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बचाव के लिए इलाज को तय समय सीमा में हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन आकलन के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में नवीनतम तकनीकों के उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों और वन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ. सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार प्रबंधन और कार्बन सिंक बनाने के देश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ मजबूत संस्थागत क्षमता भी जरूरी है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वन सीमाओं के डिजिटलीकरण, वन और वृक्ष आवरण के आकलन तथा कार्बन भंडार के अनुमान पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान तथा यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।